अध्याय पाँच। मीराबाई। सीधी अभिव्यक्ति कविता और व्यक्तित्व का तादात्म्य। मीरा का काव्य उन विरल उदाहरणों में है जहाँ रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। परस्पर के संपर्क से वे एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जीवन वृत्त से अलग किए जाने पर इस काव्य की सृजनात्मक क्षमता घट जाती है। मिलता जुलता नारी चरित्र होने के कारण गोपियों की विरह भावना का अध्यारोपण मीरा पर आसानी से हो जाता है। उनका काव्य सूर द्वारा विस्तार में चित्रित गोपियों की विरहोन्मुखता का डिटेल या ब्यौरा है। जीवन वृत्त में गोपियों ब्रज की गोपियों से और रचना धर्मिता में सूर से एक बार की साम्य मीरा के पदों में अतिरिक्त तीव्रता भरता है। सूर के काव्य में गोचारण वातावरण की जो स्वच्छंद तन्मयता है उसकी जगह मीरा में राजस्थान से ब्रज की प्रणय यात्रा की उदग्रता है। ब्रज राजस्थान और गुजरात में कृष्ण लीला की दृष्टि से जो सांस्कृतिक एकता रही है मीरा की काव्यात भाषा में वह भलीभांति प्रतिफलित होती दिखती है। मीरा का प्रणय संचरण जैसे उनके भाषिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है। मुरली प्रसंग में सूर ने जो लिखा है, उकठे तरु भय पात पाथर पर कमल जात आरज पथ तज्यव नाथ व्याकुल नर नार, उसका जीवंत साक्ष्य है मीरा का व्यक्तित्व और कृतित्व। आरच पथ का त्याग गृहस्थ जीवन में सिर्फ कृष्ण के नाते से ही स्वीकार्य है। कृष्ण लीला ब्रज की संस्कृति और ब्रज भाषा की पद परंपरा एक दूसरे से जुड़कर तो विकसित हुए ही उत्तरी भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा भी इस प्रभाव से गतिशील होती रही। ध्रुपद धमार से लेकर ख्याल और भजन तक के पद या बोल ब्रजभाषा में रहे और इस परंपरा के अधिकतर प्रसिद्ध संगीत घराने ब्रज क्षेत्र में विकसित हुए, आगरा जयपुर ग्वालियर आदि। अवधि में रामचरितमानस जैसी विराट कृति सृजने पर भी तुलसी जब पदों की रचना करते हैं तो ब्रजभाषा में। इस संगीत परंपरा के चरित नायक या तो शिव हैं जो स्वयं कलाओं के अधिष्ठाता देवता हैं या फिर कृष्ण जिनके माध्यम से संगीत और कलाओं का प्रवेश गृहस्थ जीवन में होता है। शास्त्रीय संगीत के बोल कलावंतों ने बहुत बार स्वयं बनाए और पद लिए तो अधिकतर सूर मीरा तथा अन्य कृष्ण भक्त कवियों के। इन दोनों विधाओं का पारस्परिक संपर्क भी बना रहा। यूं इस क्षेत्र की मानसिकता बनाने में काव्य और संगीत की संपृक्त भूमिका बहुत दूर तक सक्रिय रही है। ब्रज क्षेत्र की कला और कविता में कृष्ण का अभेद यदि किसी से है तो शिव से। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को शिव का आराध्य दिखाया है और शिव को राम का, पर सूरदास कृष्ण और शिव में अभेद देखते हैं। भारतीय देवमाला में राम का चरित्र आदर्श की दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम का और रचना प्रक्रिया के संदर्भ में सीधा साधा माना जाता है। कृष्ण और शिव जैसे तनाव या अंतर्विरोधी यहाँ नहीं दिखाई देते। राम और कृष्ण के चरित्र में जो अंतर दिखता है, जो किंवदंती के अनुसार तुलसी के मस्तक नवाने के पहले कृष्ण से धनुष बाण लेहु हाथ कहने के लिए प्रेरित करता है, वह कृष्ण और शिव के बीच नहीं। तब वह कारण नहीं कि सूर ने कृष्ण और शिव के चरित्र में साम्य पर लक्षित किया है। सखिरी नंदनंदन देखूं दूरी धूसरी जटा जुटिल हरि किए हर भेष नील पाट पिरोई मणिगन फनिग धोखे जाय खुन खुना कर हसत हरि हर नचत डमरु बजाय देखी अंग अनंग डरप्यो नंद सुत हर जान सूर के हृदय बसो नित्य श्याम शिव को ध्यान। मीरा के अनेक पदों में अपने प्रिय के लिए जो जोगी संबोधन और तदनुसार रूप विधान आता है वह सूर के श्याम शिव ध्यान से तुलनीय है। जोगिया के प्रति किया दुख हुई, जोगी मत जा मत जा, जोगी माने दर्श दिया सुख हुई। जोगिया ने कह ज्यों को आदेश में पद का आरंभ, जोगी या जोगिया को लेख से होता है और अंत में गिरधर नागर या श्याम का ध्यान आता है। प्रेम और भक्ति के संपृक्त रूप में आलंबन के लिए कृष्ण और शिव का यह संपृक्त रूप आदर्श है। व्यक्तिगत संदर्भ से विशिष्ट मीरा के कृतित्व में प्रेम और भक्ति के पक्ष सहज भाव से घुल मिल गए हैं। यह संपृक्त अनुभूति जो कृष्ण और जायसी में अलग अलग रहस्यवादी प्रतीक पद्धति में ढलती है और सूर में कृष्ण राधा का प्रणय चित्र बनती है, मीरा में सहज आत्मानुभूति का गीत बन जाती है। कबीर की ही तरह मीराबाई की काव्य भाषा के आधार में कई बोली रूप मिश्रित हैं। मीराबाई की पदावली की भूमिका में परशुराम चतुर्वेदी ने दिखाया है कि मीरा में चार भाषा स्तरों का प्रयोग है। पहला राजस्थानी, थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब खड़ी, साजनिया दुश्मन होय बैठिया, सब ने लगू कड़ी। दूसरा ब्रज भाषा, यह विधि भक्ति कैसे होय, मड़की मैल हियते न छूटी, दियो तिलक सिरित होय। तीसरा पंजाबी, हो काना किन गूंथी जुल्फा कारियां। गुजराती, प्रेम प्रेमनी प्रेमनी रेल, मने लाग कटारी प्रेमनी, जल जमुना माँ भार माँ गयाता, हति गात गर माथे हेमनी रे। इस प्रसंग में अंतर्वर्ती शाखा की आधुनिक कालीन भाषाओं और उनकी पारस्परिक स्थिति के संबंध में गृहर्षण का मंतव्य अनायास स्मरण हो आता है। गृहर्षण ने लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा, जिस प्रकार पंजाबी उत्तर पश्चिम में मध्य देश की प्रचलित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार राजस्थानी उसके दक्षिण पश्चिम में प्रचलित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंतिम प्रसार कार्य में मध्य देश की भाषा राजस्थानी क्षेत्र से होते हुए गुजरात के समुद्र तट तक पहुंच गई है। यहाँ यह गुजराती का रूप धारण कर लेती है। ये नोटेड कहाँ पर, भाषा सर्वेक्षण पृष्ठ संख्या 314। मीराबाई की काव्य भाषा के उपयुक्त विविध आधार मानव गृहर्षण के इस भाषा वैज्ञानिक पर्यवेक्षण को व्यवहारिक रूप में संपुष्ट करते हैं और ब्रजभाषा राजस्थानी पंजाबी गुजराती की तात्विक एकता को प्रदर्शित करते हैं। ब्रज से द्वारका तक चलने वाली कृष्ण भक्ति की यात्रा ने जैसे इन भाषा रूपों को परस्पर मिला दिया हो। मीरा की अपनी काव्य यात्रा इसी के समानांतर है। यहाँ यह स्मरणीय है कि मीरा ने अपने पूरे के पूरे पद इन अलग अलग बोली रूपों में नहीं लिखे, वरन अधिकतर उनकी आधार भाषा में इन कई भाषिक तत्वों का मिश्रण हो गया। प्रधानता ब्रज और राजस्थानी की है। मीरा की काव्य भाषा में सर्जनात्मक क्षमता कम है। सूर या तुलसी जैसा भाषा का कुशल प्रयोग नहीं दिखाई देता। यहाँ लोकगीतों की तरह सीधे अभिव्यक्ति पर बल है। लाक्षणिक प्रयोग बीच बीच में जहाँ तहाँ भले मिल जाए, नारी होने के कारण मीरा की तन्मयता और विरह भावना कुछ अपने आप से प्रामाणिक लगती है। उनके पदों का भाषिक गठन उतना सशक्त नहीं। उदाहरण के लिए लोकगीत जैसे सीधे वर्णन द्रष्टव्य हैं। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनावे, घूमर घटा ऊलर होई आई, दामिनी दमक डरावे। अथवा कारी अधियारी बिजली चमके, बिरहणी अति दर पायो रे, गाजय बाजय पवन मधुरिया, मीहा अति झड़ लाये रे। यहाँ सीधा पारंपरिक वर्णन है। भाषा प्रयोग से कोई विशिष्ट अर्थ क्षमता उत्पन्न नहीं होती। लोकगीतों की तरह दादुर मोर पपीहा बोले वाली पंक्ति तो इसी रूप में कई पदों में आती है। वर्णन का ढंग और कहीं कहीं हल्का प्रस्तुत विधान कृष्ण काव्य के प्रसिद्ध रचयिता सूर का अनुकरण करता है, पर वहाँ भी बेपरवाही अधिक है। इसीलिए कुछ पद विधान में सूर जैसे लग सकते हैं पर उनमें वैसा निखार नहीं। कुल मिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्तिगत तन्मयता का विस्तार अधिक है, कविता का दक्ष संप्रेषण कम। यह अवश्य है कि आधुनिक नारी सशक्तिकरण युग के बहुत पहले मीरा ने अपने आप को स्वयं सशक्त बना लिया था, व्यक्तिगत जीवन में भी और उससे जुड़ी काव्य रचना में भी।